ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कहाँ से शुरू करें? गिरिराज जो हैं वो उनकी एक विशेषता है, वो पांचों रसों में भगवान की सेवा करते हैं। वास्तव में पांचों रसों में नहीं करते हैं, लेकिन पांचों रसों को सपोर्ट करते हैं। जैसे यमुना जी है, वो भी सभी लोग सभी प्रकार के लीलाओं का अवलोकन करती हैं और सभी प्रकार के लीलाओं के लिए क्या कहते हैं उसको, पार्श्वभूमि बैकग्राउंड तैयार करती है। ऐसे सबका भाग्य नहीं होता है। वृंदावन भूमि जो है वो सभी प्रकार के रसों को सहायता करती है, लेकिन यशोदा माई की तरफ से वात्सल्य की सहायता होती है, गोपियों की तरफ से माधुरी की सहायता होती है, सखाओं की तरफ से साक्ष्य की सहायता होती है। इन गोवर्धन का ऐसा एक विशेष गुण है कि वो सभी रसों की लीला करने के लिए सपोर्ट देते हैं। और गोवर्धन की एक और विशेषता है कि वो कोई भी जब सेवा उनकी तरफ से होती है तो वो सामने से नहीं करते हैं, वो लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। माधुरी लीला लीला में गोपियों की सहायता करते हैं, सख्य लीला में सखाओं की सहायता करते हैं, बाकी लीलाओं में गौचारण में गौओं की सहायता करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट दास अनुदास गोवर्धन हैं। स्वयं भगवान होने पर भी गोवर्धन सब दासों के दास हैं, ये उनकी विशेषता है। आमतौर पर जब कोई महान व्यक्ति होता है ना, तो उसके महान होने के वजह से वो ज़्यादा किसकी सहायता नहीं कर सकता है, वो लोगों से सेवा लेता है जब कोई व्यक्ति महान होता है। लेकिन गोवर्धन स्वयं भगवान होने पर भी भगवान के सभी भक्तों को आगे करते हैं और खुद पीछे रहते हैं, और कहीं भी उनके अस्तित्व का डंका नहीं बजाते हो। अभी देखो, इतनी घनघोर वर्षा हो रही है, सब लोग मजे में हैं गोवर्धन के अंडर, गोवर्धन के नीचे सब लोग आनंद में हैं, सब कृष्ण को देख रहे हैं, गोवर्धन को उठाए हुए हैं और मुरली बजा रहे हैं, सुंदर अवस्था में खड़े हैं। इतनी सुंदर अवस्था में खड़े हैं कि सात दिन सात रात किसी को पता भी नहीं चला कि खाना भी होता है और सोना भी होता है, बीच में भूख भी लगती है, किसी को समझ में नहीं आया। और एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इंद्र के द्वारा समर्त के बादलों के द्वारा भेजी गई मूसलधार वर्षा का आघात सहन कर रहे हैं, है ना? ऑल द टाइम इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी प्रलय काल की। जैसे मैं दोपहर को बता रहा था, 1000 किलोमीटर तक पृथ्वी पे पानी इकट्ठा करता है संवर्तक बादल प्रलय काल में, तब जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। उस प्रकार के वर्षा का आघात गोवर्धन पे अकेले पे हो रहा है, पूरे पृथ्वी पर नहीं हो रहा है, सब जगह पर प्रलयकारी वर्षा नहीं हो रही है, केवल गोवर्धन के ऊपर ही हो रही है। फिर भी गोवर्धन के तरफ से कोई कंप्लेन नहीं है, उल्टा ऐसा वर्णन आता है कि गोवर्धन के ऊपर का एक पौधा भी बाका नहीं हुआ इस वर्षा से, एक भी घास के पत्ते की मृत्यु नहीं हुई, एक भी पेड़ नहीं गिरा उसके ऊपर से। इसका कारण यह है कि क्योंकि गोवर्धन पूरी तरह से श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित थे। एक सेवा होती है जब वो सेवा करने से अपने को भी खुशी मिलती है, जैसे हम लोग किचन में सेवा करते हैं डीटी वर्शिप में, तो हमको भी महाप्रसाद मिलता है एंड में। जाने के पहले वो कुक करने वाले माताजी प्रभु जी एक पैकेट ले जाते हैं, अपना उनका अधिकार है। इट्स अ पर्क, महाप्रसाद जो कुक करते हैं वो महाप्रसाद लेके भी जाते हैं। फिर आपको बोलेंगे कि कल से महाप्रसाद कुकिंग करने वाले को महाप्रसाद लेके जाना बंद, तो फिर कितने लोग कंटिन्यू करेंगे ये भी एक प्रश्न है। ऊपर से बोलेंगे इतना वहाँ धुआं एग्जॉस्ट भी लगाया नहीं है, तो धीरे धीरे सब लोग कट हो जाएंगे। और रही बात प्रचंड कष्ट करके सेवा करने की, वो तो बहुत रेयर होता है ना, इतना कष्ट होके भी आनंद से सेवा की जा रही है, वो तो बहुत परमोच्च स्थिति है भक्ति की। तो गोवर्धन के ऊपर यहाँ पर जानलेवा हमला हो रहा है संवर्तक बादलों के द्वारा, और शास्त्र में से लिखा है कि क्योंकि भगवान ने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली का अग्र जो है वो उनको नीचे से लगाया था, उसके तरफ से सारी ऊर्जा, सारा आनंद, सारी एक्सटेसी उसको प्राप्त हो रही थी, यहाँ तक कि उसके रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। तो भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली का अग्र भाग का स्पर्श होने से इतनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, तो भगवान के चरणों में अगर शरणागति स्वीकार कर ली तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी, कितना अभय प्राप्त होगा, कितना सुकून प्राप्त होगा, कितना आनंद प्राप्त होगा। गोवर्धन उसका एक प्रमाण है कि जब भगवान की निरपेक्ष सेवा की जाती है तो कितना भी भयंकर कष्ट आतंक हो फिर भी आनंद का अनुभव होता है, आतंक वाले स्थिति में भी आनंद का अनुभव होता है, नहीं तो उसको कष्ट ही कष्ट था ना। कहते हैं गोवर्धन के ऊपर जो शेर सिंह थे ना वो चिल्लाते हुए बाहर निकल रहे थे, लेकिन गोवर्धन को आनंद आ रहा था बहुत। ये श्री कृष्ण भक्ति की महिमा है, श्री कृष्ण की भक्ति करने पर क्या लाभ होता है। एक लाभ तो मैंने जो पहले बताया था अभी आपको दोबारा बताता हूँ। श्री कृष्ण भक्ति का एक सबसे सर्वोत्तम लाभ ये है कि हम लोग कितना भी कष्ट में रहेंगे और श्री कृष्ण भक्ति में रहेंगे तो वो कष्ट वाली स्थिति जो है वो श्री कृष्ण भगवान आनंद वाली स्थिति में बदल देते उसको। और ये सब अनुभव की बातें हैं, प्रवचन की बातें नहीं हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण में गया है, श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उसको ये अनुभव जरूर आता है। कितनी भी कष्टकारी अवस्था होगी तो कैसे कृष्ण उसको आनंद वाली स्थिति में मोड़ लेते हैं अपने भक्त के लिए। जो भक्त उन पर प्रेम करता है उनके लिए वो कष्ट वाली स्थिति को भी आनंद वाली स्थिति में बदल देते हैं। और जो ये अनुभव करता है, बंद हो गया, कोई छोड़ दी उसको, कोई बात नहीं। आप लोग बैठी। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है तब तक ये सारे अनुभव नहीं आते हैं, ये सारे किताबों में रह जाते हैं। सारे जो अनुभूतियां हैं, रियलाइजेशंस हैं, वो सब किताबों में सीमित रहती हैं जब तक स्वयं हम उसमें कुछ कार्य नहीं करते हैं। और एक विशेष बात गोवर्धन की ऐसी है कि गोवर्धन एक ऐसा गोवर्धन लीला एक ऐसी स्थिति है, इसको कम करो उसको। कि कभी भी भगवान की लीला में एक रस की लीला एक साथ में होती है, एक साथ चलती है। मतलब जब गाय चरा रहे हैं तो गाय चरा रहे हैं, उस पर रास लीला नहीं कर रहे हैं, है ना। दिन में रात को जो गोपियों को मिलते हैं तो रास रचाते हैं, गाय चरण नहीं करते हैं। घर में जाते हैं तो मैया उनको दुग्धपान कराती है, नहलाती है, वात्सल्य रस, उसमें साख्य भाव और उसमें सखी भाव नहीं आता है बीच में। इसका मतलब ये होता है कि एक समय पे भगवान एक रस की लीला करते हैं और उसी ग्रुप के साथ में करते हैं जिनके साथ वो रस है। ये बात समझ में आपको आई? दिन भर में कभी रास नहीं होता है, गोपियाँ आएंगी तो भी दूर दूर रहती है, वो मिलने को नहीं आती, वो रात तक इंतजार करती है, जब सूर्यास्त होगा तब हम मिलेंगे, हमारा समय शुरू होता है। और तभी ग्वाल बाल रोने लगते हैं कि हमारा समाज अभी समाप्त हो गया है, अभी हमको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। अभी मुझे इस पर एक कथा याद आ रही है कि सुदामा श्रीदामा जो थे ना, वो रोज रोते थे रात को कृष्ण के विरह में। उनको वो कृष्ण को शाम को छोड़ना और रात तक सुबह रह के सुबह तक वेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो एक दिन वो बहुत भयंकर अवस्था में कृष्ण के साथ आए और बोले कि मैं ना अभी ज़्यादा दिन जीऊँगा नहीं, मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, क्योंकि मुझसे रात का आपका विरह सहन नहीं होता। तो कृष्ण ने कहा, थोड़ा मजाक किया उनका, मतलब ऐसे ही, तो वो और गंभीर हो गए, तो आप हास्य प्रयास कर रहे हो लेकिन मैं तो निश्चित मर जाऊँगा। तो भगवान समझ गए कि गंभीर मामला है, तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो श्रीदामा जी कहते हैं कि एक चित्रपट बना के कम से कम दे दो आपका, ताकि मैं चित्र को देख के मेरा विरह को थोड़ा सा ठंडा कर सकूँगा, आपको देख देख के रात गुजारा करूँगा। तो कृष्ण भगवान मैया के पास गए और बोले, मेरा दोस्त श्रीदामा जो है वो बहुत व्याकुल रहता है, एक चित्रपट बनाने की व्यवस्था करो। तो उस समय तुरंत यशोदा माई जो है वो चित्रा सखी को याद करती है, चित्रा सखी को बुलाती है और कहती है कि बुला लेती है। तो चित्रा सखी बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझती है, भाग्यवान समझती है, और वो भाग के आती है कि मुझे मैया ने बुलाया है। तो मैया कहती है कि कृष्ण का चित्र बनाना है, क्योंकि तो चित्रा सखी जो है वो चित्र बनाने में बहुत कुशल है, बहुत ज़्यादा। चित्रा सखी के बहुत सारे गुण हैं, उसमें एक गुण है चित्रपट निकालना, दूसरा गुण है कि वो पक्षियों से बात कर सकती है, उनकी भाषा उनको आती है, तीसरी बात है कि वो बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है और पामिस्ट भी है, पेड़ से भी बात करती है, पेड़ से भी, ऐसे कई गुण हैं उसके। तो एक गुण है चित्रपट बनाने का। तो वो बहुत खुश होती कि मुझे राधा रानी यशोदा माई की तरफ से सेवा प्राप्त हुई, इतना भाग्य है मेरा कि आज मैया ने मुझे याद किया है। तो झट से जाती है, तुरंत चित्रपट बनाने की व्यवस्था करती है। तो चित्रपट कैसा बनता है किसी व्यक्ति का, उसको एक पोज में बिठाते हैं हम लोग, ऐसे अब ऐसे बैठो, उधर ही देख के बैठो, है ना, ऐसे ही बोलेंगे आपको, और फिर वो देख देख के चित्र बनाएंगे। अगर ऐसा चंचल बच्चा होगा तो उसका चित्र कैसे निकालेंगे, है ना, हर एक मुद्रा अलग अलग है उसकी, दो मिनट के अंदर। तो हमेशा वो व्यक्ति को बिठाते हैं और वो चित्र निकालते हैं। तो ये अभी मन में ध्यान कर रही है कि कृष्ण का एक छवि जो है वो मन में बस जाए, ताकि वो मन छवि पर चिंतन करके मैं उसको पेंटिंग करूं। लेकिन क्या कहें आपको, जैसे ही वो ध्यान चित्रपट की व्यवस्था करके पूरा पेपर पेंट वेंट सब करके बैठ जाती है और अभी वो ध्यान करने का प्रयास करे, उसके मन में असंख्य छवियां कृष्ण की उत्पन्न हो रही है, हर क्षण में अलग छवि, कभी मुरली बजा रहे हैं, कभी नाच कर रहे हैं, कभी माखन चोरी कर रहे हैं, कभी नृत्य कर रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो उसको बहुत दुख होता है कि अब मैं चित्रपट कैसे निकालूं, इतनी बड़ी सेवा प्राप्त हुई है लेकिन एक छवि मन में फिट नहीं हो रही है, तो चित्रपट कैसे निकालूंगी। तो बहुत देर प्रयास करते हैं, बहुत त्रस्त हो जाती है, किसी एक छवि पर मन उसका एकाग्र होता ही नहीं, क्योंकि छवियाँ बदलती रहती है। तो फिर बाकी सखियों को मिलती है ललिता विशाखा को जाके और कहती है, ऐसी समस्या है मेरी, आज सेवा तो प्राप्त हो गई है लेकिन ये समस्या है कि मन में कोई छवि फिक्स नहीं हो रही है। तो ललिता विशाखा बताती उनको, कि आपने राधा रानी की परमिशन ली क्या, उनको खबर करके उनकी कृपा लिया क्या आपने? नहीं, मैं तो इतने एक्साइट हो गई थी कि मैं अपने आप ही चालू कर दिया, जाओ पहले राधा रानी की कृपा ले लो। तो समझ जाती है कि मेरी गलती इस बात की है कि मैंने राधा रानी की कृपा नहीं ली। तुरंत जाती है और उनसे विनती करती है कि अब आशीर्वाद दो, मुझे सेवा मिली है, मैं अच्छी तरह कर सकूं। राधा रानी आशीर्वाद देती है तो तुरंत मन में एक ही छवि आके बस जाती है कृष्ण की, और उसको देखकर वो चित्र बनाती है, और चित्र बनाकर मैया को लाके देती है, मैया कृष्ण को देती है, कृष्ण अपने सखा को देते हैं, और वो कुछ हद तक अपने विरह को शांत करने में सफल हो जाते हैं। इसको ब्रज में कहते हैं चित्रपट लीला, और इसका नाट्य मंचन मैंने देखा था करीब 25 साल पहले बरसाने में। इतनी सुंदर लीला है, छोटी सी लीला है, बहुत सुंदर लीला। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि एक समय पर एक ही रस की लीला होती है, और गोवर्धन के नीचे जो हुआ वो एक अद्भुत कार्य हुआ। सभी प्रकार के भक्त जो हैं वो एकत्र हुए थे, है ना, मतलब ब्रज में जितने लोग थे वो सब लोग गोवर्धन के अंडर थे। इज नॉट ट्रू? कोई जानवर बचा नहीं था, कोई मोर नहीं बचा था, कोई तोता नहीं बचा था, कोई खरगोश नहीं बचा था, कोई भैंस नहीं बचा था, कोई बैल नहीं बचा था, कोई गोप नहीं, गोपी नहीं, माताएं नहीं, सब लोग उसके अंदर थे, क्योंकि सब लोगों को जान से जान बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन के अंडर बुलाया था ना। तो एक तरह से कहते हैं कि ब्रज जो है पूरा वो गोवर्धन के अंडर आया था, और गोवर्धन तो इतना बड़ा नहीं है कि ब्रज को व्याप्त कर सके, तो फिर कैसे गोवर्धन के अंडर आए वो सब लोग? क्या आपका उत्तर है उसके लिए? गोवर्धन बढ़ गया था, गोवर्धन एक्सपांड हो गया था। उसके एक्सपांड होने का पहले भी एक प्रूफ था कि जब ये हनुमान जी उनको लेने आए थे तो वो उठा नहीं पाए उनको, तो हनुमान जी उनका विस्तार कहाँ तक है वो देखने के लिए गए थे, तो जहाँ देखने के लिए गए वहाँ पर गोवर्धन जी बढ़ते 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 रहे, तो गोवर्धन का एंड ही नहीं मिला उनको। फिर इस तरफ से गए ढूंढने के लिए कि यहाँ कितना तक है, तो यहाँ पर भी वो उनका एंड नहीं हुआ, यहाँ पर भी उनका एंड नहीं मिला। तो विस्तार करने की शक्ति गोवर्धन ने पहले से ही है। तो जैसे ही पूरा ब्रज उनके नीचे आ गया तो सारा ब्रज को अपने अंदर समेटने के लिए गोवर्धन विस्तारित हो गए, ऑलमोस्ट पूरा ब्रज ही गोवर्धन से व्याप्त हो गया था। अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग कि गोवर्धन के अंडर क्या हुआ क्योंकि वो एक अलग लीला है। अभी जैसे ही वो अंदर चले गए और उन्होंने एक हाथ पे गोवर्धन को उठाया, पहले तो हथेले पे उठाया था, बाद में उंगली पे लिया उसको। अभी उनके लिए तो लीला है, देखने वालों के लिए टेंशन है ना। अगर हाँ पर हम उसके अंडर होते तो देखते भाई कैसे पकड़ रहे हैं, गिरेगा तो नहीं हाथ से, तो बालक है, सुबह से खाया नहीं है, अभी तो 5 बार मक्खन खा चुका होता, अभी सुबह से तो बारिश में हम लोग कहीं कुछ कर नहीं पाए, परेशानी में थे, और इसने गोवर्धन को उठा के रखा है। तो मैया बोल रही है अरे लाला थोड़ा माखन तो खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया है, और बाद में वो उसको खिलाने लगी तो माखन तो खा रहे है वो। बाद में मैया बोल रही है हाथ तो बदल ले ताकि इस हाथ को मालिश करूँ मैं, एक ही हाथ में पकड़ेगा तो कितना देर पकड़ेगा, तो वो तो उसमें खड़े हुए हैं। फिर मैया बोलती है माखन खिला के अपने उम्र वाली गोपियों से कहती है कि अच्छा हुआ ना मैंने इतने मेहनत की, पद्मगंधा गायों को बनाया मैंने। पद्मगंधा गाय पता है आपको? कितने लोगों को पता है पद्मगंधा गाय? वो है 100 गाय माता ने तैयार की थी, 100 गाय स्पेशल, उनको गोवर्धन में कमल की खुशबू वाली घास ही खिलाती थी वो, और कमल की खुशबू वाली घास खा के उसके उनके दूध को भी कमल की खुशबू आती थी। पद्मगंधा, पद्म यानी कमल और गंधा यानी जिसका सुगंध, तो जिनकी दूध को पद्म की सुगंध आती थी वो पद्मगंधा गाय उन्होंने 100 बनाई थी, और उनकी विशेष देखभाल की जाती थी हमेशा, स्पेशल काउस, और उनके दूध की मिठाइयाँ, उनके दूध का मक्खन लाला के लिए बनाते थे। तो वो कह रही है कि देखो इतनी मेहनत की आज काम आई ना, देखो कछु माखन को बड़े बल बढ़ियो, कि मैंने इतना इतना मेहनत की तो आज काम आई, देखो आज लाला ने अपना गोवर्धन उठा के अपनी करामात दिखा ली। तो मैया को लग रहा है कि ये मेरे माखन की मेहनत का असर है। तो वहाँ पर ग्वाल बाल सुन रहे हैं, है ना, वात्सल्य में एक बात हो रही है, अभी साख्य वाले बात सुन रहे हैं ना उसको, तो वात्सल्य वाली बात साख्य लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं नहीं, ये तो मैया लोगों को कुछ पता नहीं है, उनको लगता है माखन खिला के बड़ा, लेकिन हम लोग ने जो गौचारण के समय पे कुश्ती खेल खेल के इसको परास्त किया था ना, इसको हराया था, आसमान दिखाया था कई बार, क्योंकि भगवान हमेशा हारते थे ग्वाल बालों के साथ, हमेशा कुश्ती खेलते थे और हमेशा हारते थे, ये उनकी विशेषता है। भगवान के व्यक्तित्व की एक विशेषता है कि वो हमेशा भक्तों के सामने हारना चाहते हैं। होली भी खेलते तो गोपियों के सामने हार जाते हैं। उधर भांडीरवन में 10 लीला में से एक लीला है कि वहाँ पर राधा रानी और गोपियाँ भगवान से कुश्ती खेलती हैं और सभी गोपियों से भगवान हार जाते हैं, सारी गोपियाँ भगवान को हरा देते हैं। राधा रानी ललिता मल्ल जैसे वस्त्र पहन के आते हैं पूरा, और कृष्ण के साथ एक एक करके कुश्ती खेलते हैं और हर गोपी कृष्ण को हरा देती है। तो ग्वाल बाल कह रहे हैं अरे हमने जो कुश्ती दे देकर जो उसको ट्रेनिंग दिया ना, उसके वजह से हार हार कर उसके अंदर बल आया है, इसलिए वो इतना गोवर्धन को उठा पा रहा है। ये उनका अंदर संवाद हो रहा है। अभी गोपों का जो संवाद है वो गोपियाँ सुन रही हैं और गोपियों को ये पसंद नहीं है जो कुछ चल रहा है डिस्कशन। वो कह रहे ना मैया को पता है ना ग्वाल बालों को पता है कि असली राज क्या है। तो गोपियाँ कह रही है, अभी जाहिर ग्वाल बालों से बात कर रही है, कि आप लोगों को लगता है कि आपने कुश्ती से उसको ट्रेनिंग दिया है, लेकिन वास्तविक में ये सच नहीं है। कैसे सच नहीं है, तो देखो वो कहाँ देख रहे हैं। तो सबने देखा कहाँ देख रहे हैं, राधा रानी की ओर देख रहे हैं। और राधा रानी कहाँ देख रही है, उनको देख रही है। तो राधा रानी की नज़रों में से वो बल प्राप्त हो रहा है। अब ये विश्वास करने के लिए बहुत कम है ना, जैसे मैं आपको देखा और आप ऐसे हवा में उड़ने लगे और मैं कहूँगा कि मैं आपको देखा तो मैंने आपको नज़रों से आपको हवा में लटकाया है, ऐसा कहना मतलब हास्यास्पद जो ना, आप हंस सकते सब लोग। तो ग्वाल बालों को भी हंसी आई पड़ी, बोले ये सब बकवास की बातें हैं, नज़रों से उठा के रखा है, नज़रों से शक्ति प्राप्त हुई है तो हाथ में बल आ गया है, फिर पहाड़ को उठा के रखा है। उतने में क्या हुआ, सब ग्वाल बालों को लगा कि अरे अकेला लड़का कब तक उठाएगा, पता नहीं कब तक वर्षा होगी और कब तक ये उठा के रखेगा, और थक गया तो और छोड़ दिया तो हम सब लोग दब जाएंगे उसके अंदर। तो सब ने डंडे लगाए उसके ऊपर, सब ग्वाल बाल डंडे लगाए। तो बाद में उनको लगने के लगा कि अरे हमारे डंडे से ही वो खड़ा है पर्वत, तो भगवान ने थोड़ा उसको टेढ़ा कर दिया। तो सब लोग समझ गए रहे हम लोग नहीं उठा रहे। उन्होंने टेढ़ा क्यों किया, उसके पीछे भी कहानी है। जब ही शंकर पार्वती ने, सब लोग ध्यान से सुनना एक एक कहानी, ऐसे मैं शायद ट्रैक लेके जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। शंकर पार्वती ने राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए 3 महीने का व्रत किया था, त्रैमासिक व्रत, बहुत लंबा कहानी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है वो। तो उसको 3 महीने के व्रत को पूरा करने के बाद में राधा कृष्ण ने दर्शन दिया उनको और ऐसा वरदान दिया कि आप ब्रज में कहीं भी रहो, जहाँ मर्जी वहाँ रहो, आपको फुल एंट्री है, किधर भी रहो, बाकी किसी देवता को एंट्री नहीं है, बाकी कुछ लोगों को है, लिमिटेड एरिया एंट्री है। तो जब ही वो व्रत पूरा हुआ और सफल हुआ, वरदान मिला, तो पार्वती ने फीस रखी सबके लिए, अन्नपूर्णा देवी ने सब लोगों को भोजन के लिए बुलाया। अन्नपूर्णा के आमंत्रित कौन होते हैं बताओ, और उनका सर्कल क्या है, देवताओं का सर्कल है ना, वहाँ देव ऋषि देवता अलग अलग लोकों के लोग, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा लोक के, ये उनके इन्वाइटीज है। ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया था, बड़े बड़े लोगों को, और बड़ी पंगत लगाई थी। और अन्नपूर्णा के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अन्नपूर्णा इज लाइक अन्नपूर्णा, कुछ कमी नहीं है अन्न में। और अगस्त्य मुनि भी आए थे बीच में प्रसाद के लिए, उनको बुलाया था। अभी अगस्त्य मुनि को देख के अन्नपूर्णा देवी को भी टेंशन आ गया कि ये तो एक घूंट में पूरा सागर पी लेते हैं, एक बार पिया था ना उन्होंने, तो श्री कृष्ण को भी बुलाया था, श्री कृष्ण भी आए थे उसके अंदर भोजन करने के लिए। तो श्री कृष्ण के बाद मन की चिंता व्यक्त की देवी ने, अन्नपूर्णा देवी ने, कि अभी कैसे करें, अभी ये आए हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकती है, और मेरा व्रत जो है, मेरा जो ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प है वो ये फेल कर सकते ना, क्योंकि सब अकेले खा गए तो बाकी सब भूखे रहेंगे, आशीर्वाद कैसे देंगे। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करना, वो हमेशा लास्ट में बैठते हैं। क्यों पता है? अगस्त्य मुनि सबसे लास्ट में क्यों बैठते हैं पंगत में? क्योंकि तो बाकी लोगों को ऐसे देते हैं, अगस्त्य मुनि को ऐसे देते हैं, है समझ में? आप एक भगोना लेकर चावल लेके आए, सबको चावल देंगे और सब रीता करेंगे अगस्त्य मुनि को, इसलिए वो लास्ट में बैठते थे, क्योंकि पहले बैठेंगे तो एक ही सर्विस मिलेगी ना आपको, एंड में सारा बर्तन में जितना है वो सब तुम्हारे रीता किया जाएगा। तो ऐसे उनकी थाली के साली में पर्वत हुआ करते थे, चावल के पर्वत, सब्जी के पर्वत, ऐसे पर्वत हुआ करते, उसमें वो खाते थे। तो कृष्ण ने कहा कि डोंट वरी, उनकी सेकेंड लास्ट मैं बैठता हूँ, तो मैं संभाल लूँगा सब, चिंता मत करना। तो फिर वो चालू हो गई पंगत, सबको परोसना, उसको खाली करना, सबको परोसना, उनकी आँख खाली करना। तो वो इतना क्वांटिटी में भोजन कर रहे थे कि बाकी सब लोग को भोजन करके भी हो गया। अभी रिवाज क्या है, जब तक ऋषि मुनि नहीं उठते हैं, सीनियर मोस्ट, अभी आपको खाके भी हो गया तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा हाथ लेके, आप उठ नहीं सकते। वो हमारा रिवाज है कि सबसे सीनियर व्यक्ति जब तक नहीं उठेगा तब तक पंगत से आप उठ नहीं सकते। तो सबका हो गया, भगवान का भी हो गया, और ये अभी बीच में थे, मतलब अपने तो भगवान उठ गए, जय जय श्री राधे बोलते ना हम लोग, वैसे भगवान तो नहीं बोला लेकिन भगवान उठ गए, पंगत छोड़ के उठ गए, बाकी सब लोग भी उठ गए। तो अगस्त्य मुनि को थोड़ा सा अपमान जैसा लगा, उनको लगा अरे मैं तो अभी पानी भी नहीं पिया हूँ, मतलब वाटर ब्रेक भी लिया नहीं मैंने अब तक, और तुम उठ गए। तो बोले कोई बात नहीं, पानी पिला दूंगा आपको, चिंता मत करना। तो वो अगस्त्य मुनि को टेढ़ा करके पानी पिलाया भगवान ने, पर्वत को टेढ़ा किया ना इनके बहाने, तो अगस्त्य मुनि ने पानी पिया। ये भी उसे हुआ है, यहाँ पर लग रहा है कि भगवान ने ऐसा ही टेढ़ा किया, सबको डरा दिया, वहाँ पर उनको पानी पिला रहे हैं। भगवान एक साथ में अनेक लीला करते हैं। तो ये जब हुआ तो ग्वाल बालों का जो अहंकार था कि हम लोग उठा रहे हैं उसको, वो समाप्त हो गया। बीच में जब ये ऐसा हुआ ना तो सारे ग्वाल बाल जो है वो डर गए कि भाई अभी ऐसा हो गया, अभी तो पकड़ लिया लेकिन बाद में फिर क्या होगा पता नहीं। तो उन्होंने, उनके जो गुरु थे शांडिल्य मुनि, वो भी थे उसके अंडर ना, सब लोग उसके अंडर हैं, साधु ऋषि भी सब लोग अंदर हैं उसके, जो नंदगांव के, जो गोकुल के जितने भी साधु हैं वो सब भी गोवर्धन के नीचे हैं। तो उन्होंने उनको अंदर बुला लिया, बोले महाराज जी आप हमारे क्या कहते हैं रेसिडेंट साधु हैं, हमारे यहाँ रहते, हमारे यहाँ पर हमको मार्गदर्शन करते हैं, तो आप कृपा करके बताइए कि ये गोवर्धन उठाए रखेगा, ऐसा कुछ करो, क्योंकि सुनने वाला तो है नहीं, अपने आप नीचे रखने वाला नहीं है, और नीचे रखेंगे तो भी मर जाएंगे और ये गिरेगा तो भी मर जाएंगे, है ना, दोनों तरफ से मृत्यु का संभावना है। अगर ये नीचे रख देता है तो हम बारिश में मर जाएंगे, और नीचे नहीं रखता है और गिर जाते हैं तो हम दब जाएंगे सब लोग, कुछ करो। शांडिल्य मुनि ने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बैठने की व्यवस्था करो, मतलब कैसे कुर्सी की व्यवस्था है ना, वैसे सिंहासन जैसे कुछ भी हो, ये जहाँ खड़ा है उसके सामने आसन रखो और राधा रानी को वहाँ आके बिठा दो, इनकी नज़रों की भेंट होती रहेगी और पर्वत उठा ही रहेगा, चिंता मत करना। तो उनके कहने के अनुसार राधा रानी को उनको सामने आके बिठाया है, और राधा रानी देखती रही उन्हें और वो पर्वत उठाए रहे। बीच में उनको अचानक ध्यान में आया कि दाऊ भैया देख रहे हैं, तो उन्होंने नज़र झुका ली नीचे आदर के साथ, क्योंकि तो दाऊ भैया, राधा रानी और श्री कृष्ण, ये जो ट्रायंगल है ना, इनका एक विशेष नाता है। राधा रानी भी दाऊ का बहुत आदर करती है, कृष्ण भी करते हैं, और दाऊ भी कृष्ण और राधा रानी का बहुत आदर करते हैं, और दाऊ को ये पता है कि इनकी लीला करते समय अगर मैं आया तो ये आदर से लीला बंद कर देंगे, ये उनको पता था। और उनको कभी भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मेरे वजह से, मेरे होने से इनकी लीला में बाधा आ जाए। उल्टा उनको इनकी लीला देखने की बहुत इच्छा हुआ करती थी, लेकिन वो जब देखने की इच्छा करते थे तो लीला बंद हो जाती थी। तो इसलिए वो छुप छुप के लीला देखते हैं उनकी। उसका प्रमाण क्या है कि कुसुम सरोवर में उनका आखिरी मंदिर है, उसके आगे राधाकुंड में कहीं उनका मंदिर नहीं है, बलराम जी का कोई स्थान ही नहीं है। उस तरफ से उद्धव कुंड आता है, इस तरफ कुसुम सरोवर आता है, और वहाँ से और यहाँ से राधा कुंड घेरा शुरू होता है। वहाँ से 1 किलोमीटर है, यहाँ से भी 1 किलोमीटर है, और बाद में राधा कुंड है, श्याम कुंड है। तो इधर किधर भी बलदेव जी का एक भी मंदिर नहीं, आप ढूंढ के निकालो। उसका कारण यह है कि वो मर्यादा को मानते हैं और मर्यादा का पालन करते हैं कि ये राधा कृष्ण की उत्कट मिलन स्थली है, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जाते ही पूरा सब समाप्त हो जाएगा। वो काम्य वन में है, वहाँ पर भी वो छुप छुप के लीला देखते हैं। गिरिराज में वो है डोका दाऊ जी, डोका दाऊ जी, डोक दाऊ जी, वो अलग है, लुकलुक दाऊ जी अलग है, और बल कुसुम सरोवर पर लास्ट मंदिर भी अलग है। तो जब लीला करते हैं भगवान चंद्र सरोवर पे, राष्ट्र रचाते हैं, तब ये गोवर्धन पे आके देखते हैं कि राष्ट्र हो रहा है, तो वो उनको दिखाई न दे इसलिए वो झुक जाते हैं, दंडवत पोजिशन में आ जाते हैं और छुप छुप के देखना आरंभ करते हैं, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो कि ये देख रहे हैं। जिस जगह पर बलराम जी जा रहे हैं, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अगर सुनहरे रंग के पेड़ देखेंगे उनको, इसका मतलब पेड़ सुनहरे रंग का नहीं है, पेड़ तो हरा ही होता है, लेकिन अगर किसी रास्ते पर बलराम जी जा रहे हैं और वो अपने आने के पहले ही दोनों तरफ सुनहरे हो गए हुए पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि राधा रानी यहाँ से गुजरी हुई है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, वो रास्ता बदल लेते हैं। अच्छा, राधा रानी कहाँ से जा रही है सखियों के साथ और पहले से ही वो किसी पेड़ पौधों को गोल्डन देख रही है, तो समझ जाते हैं कि बलदाऊ जी यहाँ से गुजरे हैं, तो हम नहीं जाएंगे वहाँ से, रास्ता बदल देते। ऐसा उनका आदरपूर्ण रिश्ता है। तो वो बलदेव जी अपनी तरफ से राधा और कृष्ण की लीलाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन के नीचे बहुत सारी लीलाएँ हुई हैं। तो वाल वालों ने बार बार पूछा कि इसका प्रमाण क्या है कि राधा रानी की नज़रों से ही वो पहाड़ उठा रहा। तो लीला समाप्त हो गई, 7 दिन के बाद में पर्वत को नीचे रखा गया, सब लोगों को बाहर निकाल के फिर पर्वत को नीचे रखा। फिर ग्वाल बाल गोपियों को मिलने आते हैं गोवर्धन के पास और बोलते हैं कि अभी तुम, अगर तुम्हारी नज़रों में इतनी शक्ति है कि जिसके वजह से गोवर्धन उठाया हुआ था इतने दिन तक, तभी तुम अपने आप नज़रों से उठा के दिखाओ। अगर कृष्ण को देखकर तुम उससे उठवा सकते हो तो खुद भी उठा सकते ना, इतनी शक्ति अगर है कि उसको देखकर वो उठा सकता है तो तुम तो खुद तो उठा सकती हो, अभी दिखा दो ताकि हम मान लें कि आप सही कह रहे हो। तो राधा रानी को गिरिराज के तलेटी पे लाया गया और फिर उन्होंने कहा उठाऊँ क्या अभी, उन्होंने कहा उठाओ। तो उन्होंने नीचे देखा और नीचे से ऊपर देखा, जैसे ऊपर देखा तो पहाड़ ऊपर उठ गया आकाश में स्पर्श किए बिना, और ऊपर देखा और आकाश में चला गया वो, और ऊपर देखती रही। बहुत देर बाद सब लोग देखा, अरे तो हाथ भी पकड़ा नहीं है, उंगली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आकाश में तैर रहा है। फिर राधा रानी ने पूछा अभी नीचे रखो, हाँ ठीक है नीचे रखो। तो नीचे देखा तो पर्वत नीचे आके अपने जगह पर बैठ गया। इस तरह से ये बात साबित हुई कि राधा रानी के कृपा कटाक्ष में इतनी शक्ति है कि जिसके कारण ही कृष्ण भगवान ने पर्वत को उठाया था। और भी एक बात है कि जब उन्होंने बीच में ये सब होने के बाद बीच में मुरली निकाली बजाने के लिए, अभी सब लोगों को पता है कि भगवान की मुरली जो है ना, जो बजती है तो स्वयं कृष्ण जो है वो कांपने लगते हैं, बाकी सब तो कांपते हैं ही सुनने वाले, लेकिन कृष्ण भी कांपते हैं, और ये अगर कांपने लगेंगे तो पर्वत हमारे पे गिर जाएगा। फिर भी भगवान ने मुरली बजाई, और एक उनको डर था, सब लोगों को पता था कि जब भगवान मुरली बजाते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, अगर ये पिघल गया तो वर्षा से मरेंगे, अगर ये पिघल के हाथ में फिसल गया तो दब के मर जाएंगे। लेकिन फिर भगवान ने मुरली बजाई, एक तरफ से मुरली की आवाज़ सुनकर सब लोग भाव विभोर हो गए, एक तरफ से डर भी लग रहा था उनको, और एक हाथ में गिरिधारी गोवर्धन पर्वत, एक हाथ में मुरली और त्रिभंग अवस्था का दर्शन कभी भी पहले नहीं हुआ था। ये एक ही 7 दिन का ऐसा लीला था जो भगवान ने जो आनंद दिया है ना, वो और कभी भी नहीं दिया भगवान ने। एक त्रिभंग अवस्था वैसे आकर्षक है, दूसरे हाथ में मुरली, ऐसे जब ऐसे बजाता है दोनों, वे एक ही हाथ में बजा रहे हैं पकड़ के, और एक हाथ में मुरली बजा पर्वत को उठा के रखा है। इतना सुंदर दृश्य था वो। तो उसका उत्तर यही कि ग्वाल बालों को ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, ना भूख लगी, का कारण ये था कि इतना सुंदर दृश्य था वो, कि इतने सुंदर, इसलिए उनको कहते हैं रूप माधुरी। भगवान के 64 गुणों में से एक गुण है रूप माधुरी, उनका जो रूप है उसका जो सौंदर्य है वो कोई तुलना नहीं कर सकता है, इसलिए ग्वाल बाल 7 दिन 7 रात तक देखते रहे उनको, कुछ नहीं किया उन्होंने, देखते रहे बस, सब देखते रहे। तो ये जो अद्भुत लीला है गोवर्धन की, इसमें गोवर्धन ने क्या किया बताओ? गोवर्धन ने एक्चुअली कुछ नहीं किया है, साइलेंट पार्टिसिपेंट, आघात सहनना, सहन करना और शांति से खड़े रहना जहाँ पर उन्हें पकड़ के रखा है। ये भी नहीं कि भाई कब नीचे रखोगे, कितना देर उठा के रखोगे, कब तक चलेगा ये, कितने प्रश्न मन में आ सकते हैं ना। जब आपको कुछ काम नहीं होता है तो आप बीवी का क्या बोलेंगे, क्या बना रहे हो, कब तक बनेगा, कब जाना है बाहर, क्योंकि आप फ्री हो ना अभी, आपको कोई काम नहीं है। जब काम में बिजी रहते तो फिर फुर्सत नहीं रहती, उनको बोलना पड़ता है अरे खाना रेडी हो गया, खाना खाने को आ जाओ, बंद करो भाई काम। तो वजन कुछ काम नहीं ना अभी, केवल उंगली का स्पर्श हो रहा है नीचे से, ऊपर से आघात हो रहा है, वो सहन कर रहे हैं, आगे क्या है, नो अदर एक्टिविटी ना। लेकिन ये गोवर्धन की विशेषता है कि वो कभी भी, जैसे होता ना बेस्ट सर्वेंट कौन होता है, जो बार बार के पूछता नहीं है महाराज क्या सेवा है, महाराज कपड़े दो, महाराज क्या कुछ करूँ, मैं झाड़ू लगाऊँ, महाराज कुछ करूँ, वो इनविजिबल एंड अवेलेबल, ये बेस्ट सर्वेंट का गुणधर्म है। वो बार बार सामने नहीं आता है मालिक के, लेकिन बुलाते ही तुरंत सामने हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं इनविजिबल बट अवेलेबल, दिखता नहीं है लेकिन उपलब्ध है, कभी भी बुलाओ एक झटके में आ जाएगा वो। ये बेस्ट सर्वेंट का लक्षण है, वो मालिक पर हावी नहीं हो जाता है, क्या करो क्या करो क्या करो पूछ के, बैठना भी बुलाऊंगा मैं आपको, ऐसा नहीं करता है कभी, वो बॉदर नहीं करता है मालिक को। तो गोवर्धन की तरफ से केवल सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट ही था, कोई प्रश्न नहीं था, इसलिए गोवर्धन की विशेष महती है। ये बहुत मुश्किल है, जब आप बहुत इंपॉर्टेंट सेवा करते हो, सभी ब्रजवासियों की जान बचा रहे हो, कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन शांति से खड़े हैं, और किसी को पता नहीं था कि ये 7 दिन चलने वाला है, कि 10 दिन चलने वाला है, कि 50 दिन चलने वाला है, कि 700 दिन चलने वाला है, नोबडी न्यू। पर कभी किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, नीचे वालों के लिए वो आसान था ना पूछना, क्योंकि उनको आनंद ही आनंद मिल रहा था दर्शन का, गोवर्धन तो ऊपर थे, उनको कैसे आनंद मिलेगा दर्शन का, उनको ये सुख है कि मैं भगवान के उंगली के स्पर्श में हूँ और मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, बस कोई बात नहीं। लेकिन उनके लिए मेवा नहीं मिल रहा था कुछ, बाकी ब्रजवासी उस मेवे का आनंद ले रहे थे। यही महान भक्ति की परीक्षा होती है, लक्षण होता है कि वो हर स्थिति में कभी भी चिल्लाता नहीं है कितना कष्ट हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, या आनंद विभोर होकर भी चिल्लाता नहीं है वाह वाह कितना आनंद आ रहा है। आनंद को भी बचाता है और दुख को भी बचाता है, और दोनों स्थिति में शांत रहता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जवा जया जयो, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है कि सुख और दुख में हमेशा एक स्थिर रहता है, वो कभी भी चिल्लाता नहीं है दुख में भी और सुख में भी नहीं। भगवान की सेवा में अपने आप खुशी मानता है, और उस करते समय दुख मिले या सुख मिले में कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। और ये लोग इतनी चर्चा करते हैं गोवर्धन के बारे में, अरिष्टासुर था ना, अरिष्टासुर ने भी ये गोवर्धन को उठाकर भगवान की ओर फेंक दिया था युद्ध में। अरिष्टासुर और कृष्ण के युद्ध में कई बार गोवर्धन को यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ किया गया। फाइनली भगवान ने उसको लेकर वापस स्थान पर रख दिया, क्योंकि अगासुर अरिष्टासुर का युद्ध जो था ना वो राधाकुंड के आसपास हुआ था ना, तो गोवर्धन के इलाके में हुआ था, वहीं पर उनका आना जाना हुआ था। तो युद्ध में उन्होंने कई बार गोवर्धन को उखाड़ के भगवान की ओर फेंका, और भगवान ने कैच करके उसको दोबारा अरिष्टासुर के पास भेजा, फिर उसने कैच करके भगवान की ओर फेंका। एक दो बार अरिष्टासुर बेहोश हो गया, फिर भगवान ने उसको लेकर अपनी जगह पर रखा। इसका मतलब केवल अरिष्टासुर को भगवान ने नहीं उठाया है, सबसे पहले पुलत्सव ने उठाया था, और मुझे अब भी याद नहीं आ रहा है, और एक राक्षस ने भी युद्ध में गोवर्धन को उठाकर फेंका फेंकी किया हुआ है, ऐसा है। अभी देखो गोवर्धन की क्या पोजीशन है उसके अंदर, उसको उठा के फेंका जा रहा है, राक्षस फेंक रहा है, भगवान भी फेंक रहे हैं, और वो फुटबॉल की तरह इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान की लीला में सहायता हो रही है तो गोवर्धन ओके है उसके लिए, इज ओके, ऐसा है। तो गोवर्धनाष्टकम नाम का एक अष्टक है जो मेरे ख्याल से कृष्णदास कविराज या विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज ने लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत गोवर्धन के व्यक्तित्व का पूर्ण जो है ना डिटेल में वर्णन किया है कि गोवर्धन क्या है, गोवर्धन क्या उनका पर्सनालिटी है, क्या सेवा भाव है। इसलिए गोपियाँ जो सर्वोच्च भक्त है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च सन्यासी हैं, वो कहते थे कि वो माताओं के द्वारा पहने वाले चप्पल भी देखते नहीं थे, तो माताओं के पहने वाले इतने बड़े कठोर सन्यासी थे वो। लेकिन ऐसा होने पर भी वो गोपियों जैसे स्त्रियों को सराहना करते थे कि दे आर बेस्ट डिवोटीज, बेस्ट ऑफ बेस्ट डिवोटीज गोपियाँ, और उनका नाम भी जपते थे कई बार। तो वो गोपियाँ जो महाप्रभु चैतन्य की नज़रों में भी श्रेष्ठ भक्त हैं, वो गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य कहती हैं, ऐरा गैरा नहीं बोल रहे हैं, भगवान के श्रेष्ठ भक्त जो है, श्रेष्ठतम भक्त जो है, वो गिरिराज को हरिदास वर्य कह रहे हैं। ये सभी हरि के दासों में श्रेष्ठ है, वर्य है, ऐसा वर्णन करते हैं। और आगे भी वर्णन करते हैं कि भगवान राधा और भगवान कृष्ण बलराम के लीलाओं के लिए क्या क्या ज़रूरत है, वो सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इनके अंदर कंदर है, कंदर यानी कुपाएँ हैं, इनके अंदर झरने हैं, इनके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, इनके अंदर रत्न हैं, फल फूल हैं, घास है, हर प्रकार की जीवन के लिए आवश्यक योजना व्यवस्था जो है वो गोवर्धन में उपलब्ध है। हर प्रकार से तत्पर रहते हैं इन सब भी अपने उपलब्धियों को लेकर भगवान को संतुष्ट करने में। ऐसे गिरिराज का हम पूजन करते हैं, और ऐसे गिरिराज के बारे में गोपियाँ कहती हैं कि ये कृष्ण की भक्ति देने वाला है, और इनकी परिक्रमा का अर्थ होता है इनके चरणों का पूजन, इनकी परिक्रमा इनके चरणों के पूजन के भाव से की जाती है, और गोपियाँ भी इनसे भक्ति मांगती है और हम भी उनसे भक्ति मांगते हैं, और गिरिराज जी सभी भक्तों को भक्ति देने में समर्थ हैं। ब्रजवासी सभी मंदिरों में विश्वास रखते नहीं हैं, उनके अपना गिने चुने श्रद्धा स्थान है ना, एक गरुड़ गोविंद है, एक राधा रानी है, एक नंदगांव है, एक काम में उन्होंने भोजन थाली है, एक बांके बिहारी है, ऐसे कुछ गिने चुने ठाकुर हैं उनके, और सब लोग सब जगह जाते नहीं हैं। कुछ ब्रजवासी दामोदर के ही भक्त हैं, वो दामोदर की परिक्रमा करते हैं, कुछ ब्रजवासी बिहारी जी को जाते खाली, कुछ बिहारी जी कुछ ब्रजवासी केवल गोपेश्वर महादेव को जाते हैं, बस गोपेश्वर बाबा को मानते हैं वो, लेकिन सभी ब्रजवासी गिरिराज को मानते हैं। देखो आप खुद देखो, आप लोगों को आश्चर्य होगा सुनकर, कई ब्रजवासी ऐसे हैं जो जिनकी दुकान है लोई बाजार में, वो हर रोज़ सवेरे एवरी सिंगल डे किसी भी मौसम में सुबह 5 बजे जाते हैं स्कूटर से, उधर मोटरसाइकिल पार्क करते हैं अपनी, और दौड़ के बारे बात करते हैं गिरिराज की, 3-4 घंटे में वापस मोटरसाइकिल में बैठते हैं, वृंदावन आते हैं, घर में नाश्ता करते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं। कितने लोग ऐसे, और उनको मैंने देखा हुआ है, वो ना चलते भी नहीं है और भागते भी नहीं है, वो बीच में चलते करते परिक्रमा। आपने वो ओलंपिक में वॉकिंग रेस देखा है, वॉकिंग रेस दिखा है, वैसा चलते वो, चलते भी नहीं है और भागते भी नहीं है, लेकिन 3 घंटे में परिक्रमा पूरी कर देते हैं रोज। बोलो कितने लोग ऐसे। श्रद्धा की कोई लिमिट होती है ना? अभी देखो, रोज 22 किलोमीटर चलना और दिन भर बिजनेस करना, धंधा करना, आपको लगता होगा कि दिन भर पैसे 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 करके दिन भर उसमें लगे रहते हैं, लेकिन हृदय में कितनी श्रद्धा है उनके, हर रोज जाते हैं। कितने ब्रजवासी ऐसे भी जानता हूँ, रोज 3 बजे जमुना जी में स्नान करते हैं, रोज, कुछ भी हो जाए। ब्रजवासियों का श्रद्धा स्थान है वो गिरिराज बाबा। मुझे अभी भी याद है, जब मैं यहाँ पर रहता था वृंदावन में 92 में, तो एक दिन मेरी मोटरसाइकिल घर के बाहर रह गई थी, तो रात को मैं सहज उठा और पूछा हमारे अटेंडेंट को, गाड़ी किधर है? तो वो बाहर देखने आया तो बाहर गाड़ी नहीं थी, तो वो था ना लड़का ब्रजवासी, वो बोला कि अगर गिरिराज बाबा हैं तो आपकी गाड़ी वापस आ जाएगी, और तो गिरिराज बाबा है तो रात को ढूंढने निकला वो, घूमते घूमते बिहारी जी के पास गया, राधा वल्लभ के पास गया, और वहाँ के पुलिस चौकी के बाहर एक गाड़ी पार्क मिली उसको, तो उसने पूछा ये गाड़ी हमारी गाड़ी इधर कैसे आ गई? तो पुलिस ने बोला कि बाहर पड़ी थी, हमको लगा कोई ले जाएगा तो हमने यहाँ पर आके रख दिया। तो वहाँ से रात को, बीच रात को 3 बजे गाड़ी लेके आया वो, बोला कि गिरिराज बाबा है। मतलब मोटरसाइकिल तो इधर की इधर ही थी, मैं श्रद्धा की बात कर रहा हूँ कि ब्रजवासी के अंदर गिरिराज बाबा के अंदर कितनी श्रद्धा है, ऐसा है। तो हमारा भाग्य है कि हमारे जीवन में गिरिराज जी हैं। कितने लोगों को गिरिराज जी क्या है पता ही नहीं, हमको कम से कम पता है कि गिरिराज बाबा हैं। और हमारे जीवन में अभी 30 साल में हमने देखा है कि गिरिराज का कद कम हो गया है, ये भी सच बात है। तो अगर हम गिरिराज का ठीक से लाभ नहीं लेंगे तो वो तो धस रहे हैं ज़मीन के अंदर ना, एक दिन नष्ट भी हो जाएंगे भगवान की इच्छा से, कलयुग के प्रभाव से, तुलसी मुनि के शाप के प्रभाव से। इसलिए कम से कम ना रोज़ गिरिराज को याद करना चाहिए, गिरिराज को, यमुना जी को, देखो वृंदावन धाम को, यमुना जी को, गोवर्धन को, राधा कुंड, श्याम कुंड को, पूरा बताओ जी मैं आपको कौन किसको याद करना है। वृंदावन, वृंदावन का मतलब वृंदावन की रज, वृंदावन की भूमि, क्योंकि वृंदावन की भूमि चिंतामणि रज से बनी हुई है, और वो चिंतामणि रज जो है वो वृंदावन धाम का वैशिष्ट्य है। वृंदावन धाम का वैशिष्ट्य क्या क्या है? चिंतामणि रज, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष पेड़, ये 3 से ब्रजभूमि बनती है। तो आपको याद कैसे करना चाहिए? वृंदावन धाम चिंतामणि रज के साथ, यमुना देवी, गोवर्धन पर्वत, फिर गोपेश्वर महादेव, फिर वृंदा देवी, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड, फिर लाडली लाल और कृष्ण बलराम, इनका रोज स्मरण करना चाहिए इस सीक्वेंस में। बीच में 2 भूल गया, मैं दोबारा बताता हूँ, वृंदावन धाम, यमुना देवी, गोवर्धन, गोपेश्वर महादेव, वृंदा देवी, उज्ज्वल सुबल सखा, ललिता विशाखा सखी, राधा कुंड, श्याम कुंड, लाडली लाल और कृष्ण बलराम, इनका रोज स्मरण करना चाहिए, इसी सीक्वेंस में करना चाहिए, क्योंकि गोपेश्वर महादेव ये ब्रज की लीलाओं को पुष्ट करने वाले महादेव हैं, इतना इम्पोर्टेंट स्थान है उनका। तो गोपेश्वर महादेव को भी रोज याद करना चाहिए, और वृंदा देवी को क्यों याद करना है? क्योंकि सभी लीलाओं का आयोजन वृंदा देवी करती है, ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट, मैनेजमेंट, क्या चाहिए लीला में, वस्त्र चाहिए, अलंकार चाहिए, भोजन चाहिए, इत्र चाहिए, फूल चाहिए, फूलों की माला चाहिए, फूलों के बिस्तर चाहिए, कमान चाहिए, वन चाहिए, वो सबकी व्यवस्था, पक्षी चाहिए आपको, मोर चाहिए, पेड़ चाहिए अलग प्रकार के, वो सभी प्रकार के सपोर्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थापन जो है वृंदा देवी करती है। तो भले वो अष्ट सखी में नहीं है लेकिन वो अष्ट सखियों द्वारा भी उनको आदर प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि वो सभी लीलाओं का आयोजन करते हैं। और उज्ज्वल सुबल ये भगवान के ऐसे सखा हैं कि जो साख्य लीला में भी है और माधुर्य में भी है, वो ब्रिज है बीच में, उज्ज्वल और सुबल। वो गोपियों के पास में नेगोशिएशन करते रहते हैं हमेशा, कुछ हो गया तो। और ललिता विशाखा राधारानी की प्रधान सखियाँ हैं, उनका ही निर्देश लेकर वृंदा देवी, उनका एक लाइन का ऑर्डर आता है फिर वृंदा देवी सब ऑर्गेनाइज कर देती है। राधारानी ललिता विशाखा कहेगी कि आज झूलन यात्रा करो, वो भी कामे वन में करो, तो ये लो लाइन के ऊपर पूरा रात की यात्रा ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो वृंदा देवी, उज्ज्वल सुबल, ललिता विशाखा, राधाकुंड श्यामकुंड, लाडली लाल और कृष्ण बलराम। उज्ज्वल सुबल मैं अभी बताया ना कि बहुत इम्पोर्टेंट सखा है वो, जो गोपियों के बीच में सेवा करते हैं, इधर भी है उधर भी है। जब कुछ झगड़ा होता है गोपियों से तो ये सुलह कर देते हैं, और यहाँ पर भी सहायता करते हैं, इधर भी रहते हैं, जब कुछ गड़बड़ हो गया तो इधर भी आ जाते हैं। और जब भगवान को गोपियों से मिलना है तो सुबल जाकर अरेंजमेंट करते हैं उसकी, उनकी सेवा का हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। जैसे भगवान व्याकुल हो रहे हैं और राधा रानी आ नहीं रही है, बार बार मुरली बजा रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है, तो सुबल को भेजते, जाओ भाई तू कुछ कर अभी। तो सुबल कुछ आइडिया करता है और जाके राधा रानी को लेके आता है कृष्ण से मिलने के लिए। तो वही कर सकता है क्योंकि वो राधा रानी जैसे दिखता है, उसका दर्शन राधा रानी जैसा ही है, पूरा शरीर यष्टि और चेहरा उसके जैसा ही है। इसलिए कई बार वो राधा रानी बनता है और राधा रानी को अपने भेष पे भेज देता है, सखा बनाकर एक्सचेंज करता है ड्रेस। राधा रानी का घाघरा चनिया पहनता है और खुद का धोती कुर्ता उसको देता है, और वो जाकर सुबल बनकर कृष्ण को मिलके आती है। इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन है। कई लीलाएँ ऐसी, ये मुझे हिज होलीनेस सच्ची नंदन महाराज ने बताया था, इस तरह से रोज चिंतन करना है ताकि पूरी कृपा प्राप्त होती है ब्रज की। हाँ, वृंदावन, यमुना, गोवर्धन, गोपेश्वर महादेव, वृंद देवी, उज्ज्वल सुबल, ललिता विशाखा, राधाकुंड श्यामकुंड, लाडली लाल और कृष्ण बलराम। ठीक है, पूरा लाइफ हमारा चिंतन में होना चाहिए, क्योंकि चिंतन में जो है वही एक्शन में आता है। आप जो भी कर रहे हो वो आपके चिंतन का परिणाम है। आपने आज कौन से रंग का कुर्ता पहना, ये भी आपके चिंतन का परिणाम है। आपने सोचा था कि मैं ये पहनूंगा आज, मैंने ये पहना है, मेरा भी चिंतन का परिणाम है वो। जो भी आपके जीवन में दिखाई पड़ता है वो सब आपके चिंतन का परिणाम है। और वो अगर चिंतन कृष्ण का हो जाए या कृष्ण के संबंधित वस्तुओं से हो जाए तो आपका जीवन कृष्णमय हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति चिंतन करता है, सब व्यक्ति, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग चिंतन कर रहे हैं, लेकिन क्या चिंतन कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। और जो चिंतन कर रहे हैं वो आपके व्यवहार में दिखाई पड़ता है। कथा में भी यही है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, एक ही कथा चल रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है कथा में। किसी का ध्यान कहीं है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, कोई सोच रहा है कब प्रसाद मिलेगा, कब बोल रहा है कथा अच्छी चल रही है और चलने दो, कोई बोल रहा है जल्दी खत्म होने दो, भूख लग रही है ना, एक ही कथा चल रही है। लेकिन हर एक व्यक्ति का चिंतन उसके अलग है, इंटरेस्ट अलग है, डेप्थ अलग है, आनंद मिलने वाला अलग है, उसको कष्ट हो रहा है वो भी अलग है। हर एक अलग अलग अपना अपना मन में विचार चल रहा है। तो किसी को लग रहा है क्या बकवास हो रही है, क्या जरूरत है सब कथा करने की, ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए हर आदमी का जीवन अलग है, क्योंकि हर आदमी का चिंतन अलग है, हर आदमी का विचार अलग है। और वो जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा तो सबके जीवन में आनंद दिखाई पड़ेगा आपको, भले जीवन अलग अलग हो, लेकिन जब कृष्ण का चिंतन होने लगता है तो अपने आप आपके चेहरे पे और आपके जीवन में आनंद का अनुभव आपको होने लगेगा। और यही प्रभुपाद की हमारे लिए भेंट है कि आप चाहे जितने डिफरेंट आदमी हो, लेकिन अगर आपने कृष्ण का चिंतन अपना लिया, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो आपका जीवन सफल है। चाहे आप धनी हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कुछ भी हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, भारतीय हो, साउथ इंडियन हो, मराठी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक फॉर्मूला अगर आप अपनाएंगे तो आपके जीवन की विविधता बनी रहेगी, लेकिन एकता भी बनी रहेगी कृष्ण भगवान की। आनंद वाली एकता जो है, समानता सब में दिखाई पड़ेगी। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भाषा बोलने वाले लोगों को मिलेंगे और वो सब लोग कृष्ण चेतना में हैं, तो सबके जीवन में एक समान धागा मिलेगा आपको, आनंद का, नम्रता का, प्रेम का, सेवा भाव का, आपको समान अनुभव मिलेगा, भले उनकी जीवन पद्धति अलग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? लाडली लाडली राधा और कृष्ण बरसाने के, बरसाने की राधा कृष्ण को लाडली लाल कहते हैं, बरसाने के विग्रहों को लाडली लाल कहते हैं, और वज्रनाभ ने उनको बनाया था। कृष्ण बलराम को भी वज्रनाभ ने बनाया है। वज्रनाभ जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं ना, अनिरुद्ध के पुत्र हैं, उन्होंने कृष्ण के आज्ञा के अनुसार ब्रज को सवारा तीन स्तर पे, सर, वन और विग्रह। सर यानी जलाशय, वन यानी वन, और विग्रह यानी विग्रह स्थापन करके, क्योंकि सब विग्रह नहीं थे ना पहले, मदन मोहन गोविंद जी तो बाद में बनाए गए, कई कुंड बाद में बने, कई कुंड पहले बने हुए थे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड तो बने ही हुए थे, रत्न कुंड, मोती कुंड बाद में बनाए गए। तो इस रूप में वज्रनाभ ने ब्रज को सवारा और उस उपलक्ष में उन्होंने लाडली लाल का विग्रह बनाया, बलदेव का विग्रह बनाया जो दाऊ जी में है, रेवती बलराम का विग्रह बनाया जो ऊंचे गांव में है, गरुड़ गोविंद का विग्रह बनाया जो छठीकरा में है। ये सब प्राचीन विग्रह हैं, प्राचीन। जब कृष्ण चले गए थे ना यहाँ से छोड़ के, तो बांके बिहारी राधा वल्लभ नहीं थे, वो तो अभी 400 साल पहले के विग्रह है। वो रीत हरिवंश आए तभी राधा वल्लभ जी आए, स्वामी हरिदास जी 400 साल पहले आए तो बांके बिहारी आए, राधारमण भी अभी अभी गई है, कोकुलानंद भी अभी 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 गए, चक्रवर्ती पाद जब आए तो कोकुलानंद जी आए, तो श्यामानंद गोस्वामी आए तो श्याम सुंदर जी आए, सब 400 साल के पहले। लेकिन प्रमुख विग्रह कौन है? गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, सब प्राचीन विग्रह हैं। गरुड़ गोविंद भी वज्रनाभ जी बनाया हुआ। तो ये लाडली लाल जी जो है बीच में लुप्त हो गए थे भगवान की इच्छा से, तो नारद मुनि ने अवतार लिया नारायण भट्ट गोस्वामी के रूप में, उनको स्वप्नादेश दिया उन्होंने और दिखाया राधा रानी ने हाथ पकड़ के, इधर ही हूँ मैं, तो वहाँ पर जगह है ना, वो लाडली लाडली मंदिर से लेकर जयपुर मंदिर से बीच में पेड़ है, पेड़ उधर वो विग्रह मिले थे लाडली लाल के, जो उत्खनन करके निकाले और नारायण भट्ट जी ने वहाँ पर स्थापन किया जहाँ पर आज है वो, ऐसा है। ललिता के विग्रह भी उन्होंने बनाए हैं वज्रनाभ ने, और तो उनकी समाधि जो है वो करेला गांव में है, चंपक लता के गांव में वज्रनाभ की समाधि है, और वहीं पर बैठकर शांडिल्य मुनि के मुख से उन्होंने ब्रज भागवत सुना था। और कोई प्रश्न है? यस, हमें तो भगवान के रूप में करना चाहिए, क्योंकि हम उतने एडवांस नहीं है कि उनको भक्त के रूप में देखें। तो चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते समय भक्त के रूप में करना चाहिए कि भगवान के रूप में करना चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु को हम लोग भगवान के रूप में भजते हैं, लेकिन वो उनकी लीला है कि वो भक्त बन के लीला करते हैं, लेकिन हमको उनकी भगवान के रूप में ही सेवा करते हैं। जब हम गोवर्धन की सेवा करते हैं तो उनको कृष्ण के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं ना, हमेशा भोग लगाते हैं, अन्नकूट करते हैं, जो कुछ करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब भक्तों का अभिषेक नहीं करते, हम भगवान का अभिषेक करते हैं। ऐसे गिरिराज जी को भगवान के रूप में पूजते हैं। ठीक है, जय जय श्री राधे। शाम।